रेडियो जिंदगी 1550 एम या फिर 99.7 एफएम HD3 पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए वेल AW लॉ शो, ब्रॉट यू बाय AW लॉ ग्रुप। ये शो होता है हफ्ते में दो दफा, वेंसडे की दोपहर को 3:30 से लेकर 4 बजे और फ्राइडे की दोपहर को 12 से 12:30 बजे के बीच। AW लॉ ग्रुप की जो टीम है वो हमें ज्वाइन करती है इस शो में और वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स दे टॉक अबाउट इमिग्रेशन, कभी एस्टेट प्लानिंग के बारे में, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स के बारे में, कभी डेट सेटलमेंट के बारे में। तो लिसनर्स, अगर आपके पास कोई भी सवाल होते हैं इन सबसे रिलेटेड, आप उनसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 5109368211, दैट्स 5109368211। उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com, तब उस पर लॉग ऑन करके यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मीनवाइल, अगर आप अभी फोन करना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एस्टेट प्लानिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स, वी हैव द स्पेशलिस्ट अटॉर्नी इक्लास फ्रॉम AW लॉ ग्रुप इन द स्टूडियो, जो बात करेंगे एस्टेट प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स के बारे में। तो अगर इससे ताल्लुक रखते हैं आपके सवाल तो आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पर, दैट्स 5107701550, या फिर लाइक आई सेड यू कैन ऑलवेज रीच देम ऑन देयर नंबर 5109368211। अटॉर्नी इखलास, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू रेडियो जिंदगी।
थैंक यू वीरा,
कैसे हैं आप? हैप्पी फ्राइडे।
आई एम डूइंग गुड एंड थैंक यू। आज स्टेट प्लानिंग पे बात होगी और थोड़ा सा मैं आखिर में कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा, जिसमें स्पेशली रेंटर्स के लिए कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। इसमें अटर्नी क्लाइंट जो है प्रिविलेज नहीं होता है। बेसिकली हम जो है ना, आप जब एडवाइस देते हैं तो आप क्लाइंट नहीं बना रहे होते, एक जनरल एडवाइस होती है। तो बहुत सी बार हम वेरी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग ऑफिस कर लें तो फिर हम ऐसी एडवाइस मोर डिटेल दे सकते हैं।
जी अटर्नी, वी वर गेटिंग अ कॉल पर वो कॉल शायद ड्रॉप हो गई। लिसनर, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो हमें वापस जरूर कॉल करें, क्योंकि जितने में आपका कॉल उठाती हूँ आपका कॉल ड्रॉप ही हो गया। सो प्लीज डू कॉल अस बैक 5107701550। जी,
तो स्टेट प्लानिंग से सबसे पहले मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें स्टेट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और वैसे स्टेट प्लानिंग क्या है। देखिए, US में जब कोई इंसान वफात पाता, व्हेन दे डाई, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्पोजिशन जो है वो एक मुश्किल काम है और वो गवर्नमेंट उसमें काफी इन्वॉल्व हो जाती है बेसिकली, क्योंकि लॉज हैं और बड़े टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई somebody passes away और उसके पास उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, यानी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इवन ए स्मॉल बैग जिसमें कुछ उनके कपड़े हों ये हो, या फिर कोई उनके पास बड़ा स्टेट हो, घर हो, फ्रॉम either extreme, their entire property is then at that time locked. So nobody can touch their property until it's governed by the court. Okay. And court decides how that property should be handled.
Okay.
ठीक है ना, सबसे बड़ा ये problem. चाहे वो उनके दो चार कपड़े या कंबल ही हो, या फिर लाखों डॉलर बैंक अकाउंट में हो, या बड़ी जायदाद और घर हो, नोबडी कैन टच इट, राइट? अंटिल यू गो थ्रू अ कोर्ट प्रोसेस वेयर द जज डिसाइड्स हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज ऑफ। ये सबसे बड़ा इशू है। लोग इसको जहरी बात है, लोग इस पे ज्यादा गौर नहीं करते जब तक कुछ हो ना जाए, देन दे रियलाइज हाउ डिफिकल्ट द होल प्रोसेस इज। अगर आपने स्टेट प्लानिंग नहीं की हो तो देन यू हैव टू देन गो थ्रू दिस कोर्ट प्रोसेस प्रोबेट, जो कि कैन टेक अ होल ईयर एंड कैन कॉस्ट अबाउट 5-7% ऑफ द एसेट।
अच्छा,
जब तक वो सारे एसेट्स जो है ना लॉक्ड हैं, आप कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, अप्रेजर्स के चक्कर लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, सो इट्स अ बिग हैसल। उसका बहुत आसान तरीका दिया हुआ है लॉ में, बट यू हैव टू गेट द स्टेट प्लान इन प्लेस। उसका तरीका है हाउ टू वर्क अराउंड दैट, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट एंड दे डोंट टेक एडवांटेज। उनके जहन में ये ख्याल होता है कि लुक, इफ आई डोंट ओन ए प्रॉपर्टी, इफ आई डोंट हैव ए हाउस फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड टू डू स्टेट प्लानिंग। देखिए, स्टेट प्लानिंग चाहे आपके पास घर हो या ना, कुछ तो एसेट्स होंगे आपके, कुछ अगर फैमिली है बच्चे हैं देन यू स्टिल नीड, क्योंकि बहुत से लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट होते हैं या फिर उनके पास रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं या फिर उनके यंग बच्चे होते हैं, दे ऑल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, चाहे आपके पास कोई एसेट हो या ना हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप माइनर बच्चों को पैसे नहीं छोड़ सकते, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जो भी उनका गार्डियन होगा फिर दे विल हैव टू गो थ्रू द कोर्ट प्रोसेस, गेट ऑफिशियली गार्डियनशिप एंड देन दे कैन रिसीव द मनी, विच इज अ वेरी लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो. इवन देखें इस हद तक के इवन इफ यू आर ए मदर ऑफ ए चाइल्ड एंड लेट्स से द फादर डाइड एंड लेफ्ट मनी डायरेक्टली टू द चाइल्ड, even mother has to go to the court
to
get guardianship, which takes a long and expensive process, even though she is biological mother.
It doesn't matter.
She still has to go to the court, get the guardianship, which takes, and then get that money. और अगर वो money ये process से नहीं गया, money for example life insurance है, और आपने minor बच्चे का नाम लिख दिया उस पर, the life insurance will not release that money to that minor child until they are age of majority.
Ji, attorney class, we are getting a call here. Pehle inse baat karte hain. Hello, you are on air with attorney class. Hello, are you there?
Yes, hello.
Yes, you are on air with attorney class.
Well, is it Radio Zindagi?
Yes, sir, this is the Radio Zindagi studio number. This is AW Law Show going on.
Okay, actually I was I previously had a number for Radio Zindagi on which I used to listen songs. So I was just searching on the internet and I got this number.
This is the studio number, sir. There's a show going on right now. It's a law show, so if you have a question about, if you have a question for attorney class about estate planning or contracts and agreements, then you can call in and ask a question. Meanwhile, attorney class, please carry on.
So, I was talking about minor children. If you have written their life insurance as a beneficiary, so life insurance will not release that money till a guardian has been appointed, even if that's that child's mother, a biological mother or father. And or it will remain there till they are 18, or there is a time limit. After that, it will be considered abandoned property and they'll give it to the state. And then you have to go get it from the state, which is also a difficult process. So, ye sab cheeze aati hain, aur especially jo hamari jo community hai, usme aur bhi kuch jo cheeze complicate karti hain. Ek to hai, agar aapki property back home ho, India mein ho, ya Pakistan mein ho, ya is tarah se ho, that also is a complicated thing because that property will be governed by the law of that land. तो वो आपको अलग हल करना पड़ेगा. अगर आपकी आपके हस्बैंड या वाइफ नॉन सिटीजन है तो उसके बड़े कॉम्प्लिकेशंस है. इवन इफ दे आर परमानेंट रेजिडेंट विद ग्रीन कार्ड, बट इफ दे हैव नॉट गॉट द नेशनैलिटी, देन इट विल बी अ बिग इशू ट्राइंग ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिसीज टू द सर्वाइवर. ठीक है ना, उसके अलग अलग इश्यूज हैं. ऑफकोर्स हमारे जो बहुत से लिसनर हैं वो H1B पे हैं. अगर H1B पे अगर आप और आपकी डिपेंडेंट हैं, H4 पे कोई डिपेंडेंट्स हैं और आपकी डेथ हो जाती है, सो दे हैव टू लीव द कंट्री विद इन सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. So they can't stay here to wrap up things, and if there is no estate planning in place, probate process to hoga, H1B walon ka bhi hoga estate, and that takes about a year, but you have to leave within 60 days or something like that in that short time. So how do you stay around to wrap up the so those are all problems that have to be.
Log aksar ye sochte hain na ki agar kuch hota hai aur wapas jana padta hai to ek din ke notice pe koi kaise ja sakta hai wapas.
That's right.
Let's speak to this caller. Hello, you are on air with attorney class.
Hello, I had a question. My name is Sam. Suppose we are in the process of making the trust or will, but before we do that, and suppose for some reason you have to travel abroad for some various reasons, would it work like if we do a post-dated check on somebody's name just in case something happens?
if you want to do a post-edit check, and let's say you travel and you have done a post-edit check, but the check hasn't been cashed at that time, and you die in between that time, know that, I mean, that again, no, because the everything gets frozen at the time of your death, and then they can go and make a claim. Because they are now creditors of yours, and then they can make a claim of the for the amount that they're owed.
But suppose if I don't have any debt, and I just have my in my checking account and saving account the money staying, but I don't have any debt, like zero debts on credit cards or on loan payments or anything. And what happens in that case?
Regardless of the fact that whether you have debt or not, the probate process, if you don't have the plan or trust or will, well, even if you have a will, it still goes through probate process. But if you don't have something like a trust or pay on demand, or there are different tools to pass on the money to your inheritor. It doesn't matter if you had debt or not. That's only one aspect of the whole thing. Even then, it will get locked up until the process resolves itself.
I see. So all my accounts automatically get frozen. Even if I give that check to, suppose, my friend saying, in case you hear something, just cash it out.
That's right.
Okay, makes sense. Thank you so much. Appreciate it.
All right, no problem.
Okay, thank you. Thank you very much for calling in. Listeners, of course, if you also have any questions, you can also call and ask a question, 510-770-1550. Okay, that's 510-770-1550. Otherwise, आप AW Law Group के office number पे phone करें. उनका number है 510-936-8211. That's 510-936-8211. जी, attorney class.
जी, तो उसमें अब देखें, there are many different ways how you pass on the property that you have. And part of the planning is also not just passing on the property. When you do create a estate plan, it's also important that when you are that there are documents that take care of when you're incapacitated. People also think that, okay, I don't have any property, I don't need to pass anything. Well, you can still be incapacitated. In that case, you need to have the right power of attorneys in place for things to carry on after you. So that's also part of the planning. So it's holistic. When you do the planning, it's holistic. So you have to care about your property outside the U.S. What if you're incapacitated, right? Who makes those decisions, medical decisions, your financial decisions? Again, minor children, who takes care of them? So all that has to be part of that planning. It's not just your assets, कॉल आ रही है मेरे ख्याल
हाँ जी कॉल आ रही है लेते हैं हेलो यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी क्लास
हाय आई हैड अ क्वेश्चन इज प्रोबेट रूल एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन यूएस और ओनली टू कैलिफोर्निया एंड इफ वी हैव अ पीओडी ऑन द अकाउंट सो डजंट दैट बिकम अ क्लास ए बेनिफिशियरी एंड वी डोंट हैव टू डू प्रोबेट आई लिसन टू द आंसर ऑन एयर
जी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन जो स्टेट प्लानिंग जो है बेसिकली जो प्रोबेट प्रोसेस है एंड एनीथिंग एसोसिएटेड डेथ वो है स्टेट इट्स गवर्न अंडर द स्टेट लॉ इट्स नॉट द फेडरल लॉ दैट व्हाट दैट मीन्स दैट इट इज स्टेट वाइज सो अ लॉ इन कैलिफोर्निया विल बी डिफरेंट देन वॉशिंगटन देन Oregon, Nevada, anything like that. But every state pretty much has that law, and every state will go through. But they just have their slight different version of it. So if you are in California, you will do estate planning with somebody who's qualified to practice law in California, and you have to go through California courts. And every because there is also a question of community property. Now, only some states in the U.S. have community property. Others don't have community property laws. So what happens, then you have to transfer whatever you're doing to the other state. So if you have property in other state, that is going to get governed by the laws of that state and how they. So you have it gets a little bit complicated, but it can be taken care of as part of the estate planning.
Okay.
Right.
Thank you so much. But what about the Class A beneficiary?
Yes. Thank you for reminding. Dusra ye ke there are different ways of how you can pass your property even without having a trust or a will in place. One of those are pay on demand kind of things. So you can pass your property, or so let's say if you have an account and that has a pay on demand as a beneficiary, then you'll get that money. It won't get locked. And now in 2016, California also introduced transfer on demand for houses. Actually, you can also add people. So without having to give them ownership on a deed, you can actually put a transfer on demand so they can get the get the house after you die. It gets automatically transferred over to them. All these tools are available, but they all have to be considered within, you know, what is it that you want and how you want to achieve it. Of course, some of the issues that you have to be aware of are tax implications, right? So every method has its drawbacks and pros and cons, basically. So there are tax consequences of these things as well.
Yeah, but that is an inheritance tax right?
That's correct. And then you have
governed by the state that how much you can inherit. New Jersey has the lowest, only $650,000. It's ridiculous, but that's how it is. Thank you for the explanation.
Exactly. And then when you're looking at the taxes, of course, you have to think about whether you're a citizen, non-citizen, and how much exemption you have and things like that. Yeah. So a lot of planning goes in there as well.
Okay. Thank you.
You're welcome.
Gee, thank you. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Attorney Klaas.
Yes, what about if I create a will? So will my will work?
So I think your question is whether is it sufficient to create a will to transfer your property. So will has a lot of benefits, and one of the certainly if it's executed properly. So there is specific rules governing whether a will is valid or not, right? So you have to create a will, and it has to be validly executed, and you have to basically have two witnesses who witness what you're writing. And of course, there's competency rules as well, whether you were competent when you made the will or not. Now, will can help you with identifying the guardians for your children and any other things which are non-tangible you want to leave to your children, or you want to have some advice for the children, or for other people. But children, minor children, is the biggest thing that you want to address with will. Now, the drawback for a will is that it still has to go through the probate process. So you can nominate an executor who will go to the court and will say, okay, this person left this will. So you still go through the probate process in the court, and things get locked up till that will is resolved. But that the distribution at the end will be according to your will, not according to the default state law that apply if you didn't have a will, if you died without a will or things like that. So yeah, will can be effective, but it depends on what the circumstances are, but it does not avoid the court process if that's what you're trying to avoid.
Right, sir. Okay. Thank you so much.
All right.
जी, thank you. Thank you very much for calling in. हम लोग एक काम करते हैं अटॉर्नी क्लास, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. After the break, let's come back और सभी लोगों से आगे बात करते हैं. Listeners, अगर आपके पास और सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप अटॉर्नी क्लास से, तो जरूर फोन करें 510-770-1550 पर. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे and be right back.
Yeah.
Welcome back, listeners. Welcome back to Radio Zindagi, 1550 AM and 99.7 FM HD3. Main hoon Ira, mere saath mein studio mein attorney Ikhlas from AW Law Group, jo baat kar rahe hain estate planning ki. Aap logon ke paas koi sawal hai agar, this is the AW Law Show, jo 12:30 baje tak hai. Aap koi bhi sawal poochna chahte hain, aap phone kijiye on 510-770-1550. That's 510-770-1550. Ya phir aap unke office number pe unhe phone karein, 510-936-8211. That's 510-936-8211. Unki website hai awlawgroup.com. That's the website jahan pe aap log on karke dekh sakte hain ki kaun-kaun se alag areas hain jahan pe wo aapki help kar sakte hain. Filhal, let's go, continue talking to attorney Ikhlas. Let's see ki wo aage kya share karna chahte hain.
हीरा, मैं एक टिप देना चाहता हूँ स्टेट प्लानिंग पे, फिर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स पे, स्पेशली रेंटर्स.
श्योर अटर्नी क्लास, वी हैव अ कॉलर जो एक कॉल कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे. हेलो, यूर ऑन एयर. ओके, इनकी कॉल ड्रॉप ही हो गई. जी,
तो ये कि देखें, बहुत से जो लिसनर हैं वो H-1B पे हैं होते हैं
जी.
तो H-1B का भी इशू है कि भाई आप अगर H-1B पे और आपके डेथ हो जाए तो आपके भी एसेट्स लॉक होंगे
जी.
और आपके अगर कोई डिपेंडेंट है H-4 पे, दे हैव टू लीव द कंट्री बेसिकली. सो वन वे टू गेट अराउंड इट इज टू पुट देम एज एग्जीक्यूटर ऑन योर विल और ट्रस्ट और वट एवर डॉक्यूमेंट्स दैट यू मेक, देन दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर ए B-1 बिजनेस वीजा and then remain in the country while they take care of all your assets on that. So
okay,
that's important.
All right. Hello, you're on air with
Hello,
attorney class. Aap please radio band karenge background mein. Hello.
Mere bete ki shaadi hui hai, uski wife India mein hai.
Ji.
Haan, to wo kab tak aa jayegi? 1:30 apply kar diya hai.
ये आप मेरे ख्याल मुझसे इमिग्रेशन का क्वेश्चन पूछिए. इमिग्रेशन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो हमारी टीम जो है वो आज यहाँ नहीं है. अगर हमारे ऑफिस पे आप फोन कीजिए तो वो आपको जरूर इसका सवाल का जवाब दे देंगे. हमारा ऑफिस का नंबर 510-936-8211. आप उनको फोन कर दीजिए, आपको वकास साहब या अस्मा जो है वो ये आंसर कर देंगे क्वेश्चन. थैंक यू
जी. थैंक यू वेरी मच जी.
अच्छा, तो मैं ये तो H-1B तो ठीक है, ये अगर किसी को सवाल है देखें कॉल. दूसरी चीज हम जो करते हैं अपने ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग रिव्यू, कोई अगर इश्यूज हैं उस पर वो करते हैं. तो एक जो हमें काफी कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं वो रेंटर्स के लिए आते हैं, क्योंकि रेंटल इज ऑल्सो डिपेंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ. लेकिन रेंटल लॉ में ये है कि वाइल इट्स गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द लीज एग्रीमेंट, देर इज लॉट ऑफ डिफॉल्ट लॉज ऑन द बुक्स दैट कैलिफोर्निया हैज एज राइट्स फॉर द रेंटर्स बेसिकली. तो कुछ लोग हैं जो कि दे वॉन्ट टू लीव देयर लीज अर्ली. बहुत से इश्यूज आते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो बेसिकली चार्ज करना चाहता है फॉर पेंटिंग, फॉर कारपेट रिपेयर एंड ऑल दैट. सो कैलिफोर्निया गिव्स द रेंटर्स अ लॉट ऑफ राइट्स इन दिस रिगार्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आप लीज को जल्दी तोड़ना चाहते हैं, दे कैन नॉट चार्ज यू फॉर रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लीज फॉर द एंटायर अमाउंट. सो लेट्स से आपकी एक साल की लीज है, यू वांट टू लीव इन 3 months, दे कैन नॉट देन गो एंड चार्ज यू फॉर 7 months. There are laws where you can may only have to pay for 1 or 2 months. So those rights are there. Agar wo aapko kehte hain bhai hame ghar paint karna hai, so that comes under normal wear and tear. So so you may not have to pay for that, right? There are also ways where the California laws, how you leave a property, they have to do inspection. You can ask for them an inspection, and if they do not do an inspection, then you actually do not owe them anything. And then they have to return your security deposit in 21 days. So all these laws are there. So we do help a lot of people out that way, because landlords ka to problem chalta hi rehta hai, aur yahan renters jo hain bichare wo piste rehte
hain, pareshan hote
rehte hain. And it works the other way around. We've also helped a lot of landlords as a renter jo hain.
Bilkul bilkul, jaise pata nahi ab India mein to at least hota hai ki log kiraye pe dene se darte hain, ki sochte hain ki bhai jo kiraydar hai wo kundli maar ke baith jayega aur khali nahi karega.
That's right.
Chaliye class, thank you so much for being on air with us. Hamara aaj ka show yahi khatam hota hai, but we will see you again very soon. Thank you
so much, Ira, and listeners.
And thank you, listeners, for tuning in. Aap log log on kijiye awlawgroup.com for more information on AW Law Group. This is Ira signing off for now. I will see you at 1 p.m. Tab tak ke liye, you stay tuned to Radio Zindagi. Jiye jao.